ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। सरकार ने जेनजेड आंदोलन के दौरान हुई घटनाओं की जांच के लिए गठित जांच पूछ आयोग की मियाद 25 दिन बढ़ाने का किया निर्णय। राष्ट्रीय सभा से पर्यटन विधेयक 2081 हुआ पारित। सामाजिक संजाल विधेयक 2081 हुआ वापस। और लेबनान के त्रिपोली में इमारत गिरने की घटना में कम से कम 15 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने भाद्र 23 और 24 गति को हुए जेनजेड आंदोलन के दौरान घटित घटनाओं की जांच के लिए गठित जांच पूछ आयोग की अवधि 25 दिन बढ़ा दी है। आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक ने आयोग की समय सीमा 25 दिन बढ़ाने का निर्णय किया। ये जानकारी गृहमंत्री ओम प्रकाश आर्याल ने दी। आश्विन 5 को गठित गौरी बहादुर कार्की के नेतृत्व वाले आयोग को शुरुआत में 3 महीने की समय सीमा दी गई थी। हालांकि काम पूरा न हो पाने के कारण आयोग के अनुरोध पर इससे पहले 1 महीने और हाल ही में 20 दिन की अवधि बढ़ाई गई थी। आगामी फागुन 21 गते होने वाले प्रतिनिधि सभा चुनाव के लिए 44 जिलों के लिए 100 निर्वाचन क्षेत्रों के मतपत्रों की छपाई पूरी हो गई है। ये जानकारी निर्वाचन आयोग ने दी। अब तक 1,22,56,000 मतपत्र छप चुके हैं। ये बात आयोग के सहायक प्रवक्ता कुल बहादुर जीसी ने बताई। बता दें कि प्रतिनिधि सभा चुनाव के लिए समानुपातिक और प्रत्यक्ष दोनों ही प्रणालियों के मतपत्रों की छपाई बीते पूस 22 गते से जनक शिक्षा सामग्री केंद्र लिमिटेड में शुरू हुई थी। निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को चुनाव के बारे में जानकारियां देने के उद्देश्य से मतदाता शिक्षा कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। मतदाताओं को मताधिकार को लेकर सचेत करने और सही मत संकेत के लिए प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से निर्वाचन आयोग डिजिटल प्लेटफार्मों पर निरंतर सामग्रियां संप्रेषित कर रहा है। डिजिटल प्लेटफार्मों पर दी जा रही सचेतनाओं को वार्ड स्तर तक पहुंचाने के लक्ष्य के साथ आयोग ने इसी माह के 19 गते से मतदाता शिक्षा संबंधी विशेष कार्यक्रम स्वीकृत कर क्रियान्वित कर रहा है। नेपाली कांग्रेस के सभापति गगन कुमार थापा ने कहा कि नेपाल के पूर्वाधार विकास की गति के सुस्त होने में सिर्फ सतही कारण ही नहीं बल्कि प्रणाली संबंधी समस्या बड़ी वजह है। इस बात का जिक्र करते हुए कि निर्देशन देने, ठेकेदारों को धमकाने या कर्मचारियों को गाली देने जैसी शैली से तीव्र विकास संभव नहीं है, सभापति थापा ने दावा किया कि आने वाले 5 सालों में पूर्वाधार क्षेत्र का कायापलट करने का स्पष्ट खाका उन्हीं के पास है। राष्ट्रीय सभा से सामाजिक संजाल विधेयक 2081 वापस ले लिया गया है। सरकार द्वारा सभा में विचाराधीन सामाजिक संजाल विधेयक को वापस लेने के लिए प्रस्तुत प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकृति दी गई। आज की राष्ट्रीय सभा बैठक में प्रधानमंत्री एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री सुशीला कार्की की ओर से कानून मंत्री अनिल कुमार सिन्हा ने सामाजिक संजाल विधेयक 2081 वापस लेने का प्रस्ताव पेश किया था। बैठक में विधायन व्यवस्थापन समिति की सभापति तुलसा कुमारी दाहाल ने सामाजिक संजाल विधेयक 2081 से संबंधित विधायन व्यवस्थापन समिति की रिपोर्ट सभा के समक्ष प्रस्तुत की थी। इसी तरह राष्ट्रीय सभा बैठक ने पर्यटन विधेयक 2081 को पारित किया है। सभा ने विधायन व्यवस्थापन समिति की रिपोर्ट सहित पर्यटन विधेयक 2081 पर चर्चा कर उसे सर्वसम्मति से पारित किया। सभा में संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री भी रहे कानून मंत्री अनिल कुमार सिन्हा ने विधेयक पारित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इसी क्रम में राष्ट्रीय सभा बैठक में सांसदों के मौखिक प्रश्नों का उत्तर देते हुए मंत्री सिन्हा ने बताया कि अब तक संविधान के अनुरूप 146 अलग अलग कानून जारी किए जा चुके हैं। मंत्री सिन्हा ने यह भी बताया कि संविधान के अनुसार बनाए जाने वाले कुछ कानूनों के मसौदे संघीय संसद में प्रस्तुत किए थे, लेकिन प्रतिनिधि सभा के विघटन के कारण विद्यालय शिक्षा संबंधी विधेयक, संघीय निजामती विधेयक, नेपाल पुलिस विधेयक, सशस्त्र पुलिस विधेयक, भूमि संबंधी कानून संशोधन विधेयक, बाल बालिका संबंधी प्रथम संशोधन विधेयक सहित 30 विधेयक निष्क्रिय हो गए। राष्ट्रीय सभा में 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर फागुन 20 से विदा होने वाले सांसदों ने अपने अनुभव साझा करते हुए देश की भौगोलिक विविधता और विकास में मौजूद असमानताओं को हटाने पर विशेष ध्यान देने का आग्रह करते हुए कहा कि इसमें राष्ट्रीय सभा की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। राष्ट्रीय सभा के 1/3 सदस्यों का 6 वर्षीय कार्यकाल फागुन 20 गते को पूरा हो रहा है। राष्ट्रीय सभा की अगली बैठक माघ 28 गते बुधवार दोपहर 1:15 बजे बुलाई गई है। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
हजुर दर्शन,
भाग्यवानी बाबू, राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे। उचाई मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजी।
नमस्ते, आउनु न भित्रै।
हुन्छ हजुर। अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ, तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् भाउजू।
ओए, वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
त पनि एनटिसी को सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटिसी को डे प्याक लिन *14## डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के समक्ष ब्रिटिश सेना के मेजर जनरल जेराल्ड एम स्ट्रिकलैंड सहित एक प्रतिनिधिमंडल ने गोरखा ब्रिगेड की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। मौके पर राष्ट्रपति पौडेल ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नेपाल और ब्रिटेन विकास, मानव कल्याण और शांति से जुड़े विषयों में लगातार सहयोग करते आ रहे हैं और दोनों देशों की संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों के माध्यम से विश्व शांति स्थापना को लेकर समान सोच है। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्रालय की सचिव लक्ष्मी कुमारी बसनेत ने कहा है कि सार्वजनिक सेवा प्रसारण पीएसबी नेपाल की योजना को प्रभावी रूप से आगे बढ़ाने के लिए स्रोतों का समुचित व्यवस्थापन और वित्तीय स्पष्टता आवश्यक है। आज सिंह दरबार में पीएसबी नेपाल की वर्तमान स्थिति पर हुई चर्चा के दौरान संचार सचिव बसनेत ने बताया कि नेपाल टेलीविजन और रेडियो नेपाल का एकीकरण किया गया है। ऐसे में कुछ पुराने तौर तरीकों में बदलाव आने में समय लगेगा, लेकिन बदले हुए संदर्भ में आवश्यकता के अनुसार दोनों संस्थानों को एकीकृत रूप में आगे बढ़ना होगा। मौके पर पीएसपी नेपाल के कार्यकारी अध्यक्ष डॉ महेन्द्र विष्ट ने कहा कि सार्वजनिक सेवा प्रसारण को नागरिकों के प्रति अधिक उत्तरदायी बनाने के लिए डिजिटल तकनीक के विकास, तकनीकी रूपांतरण और सीमांतकृत समुदायों की आवाज को शामिल करते हुए पहुंच का विस्तार करने संबंधी काम किए जा रहे हैं। गुलमी का रेडी रुद्रवेणी वामी टकसार सड़क खंड स्तरोन्नति के लिए फागुन 15 गति तक आंशिक रूप में बंद रहेगा। इस सड़क खंड अंतर्गत सत्यवती गांव पालिका स्थित सिसने भीर क्षेत्र में आज से सड़क स्तरोन्नति का काम शुरू हुआ है, इसलिए कुछ दिनों तक ये आंशिक रूप में बंद रहेगा। सड़क डिवीजन कार्यालय पालपा से मिली जानकारी के मुताबिक इस राष्ट्रीय राजमार्ग अंतर्गत अतिसंवेदनशील और संकरा स्थान सिसने भीर पर सड़क चौड़ी करने का काम किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक सुबह 6 बजे से 9 बजे तक, सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक और दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद रहेगी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। उत्तरी लेबनान के त्रिपोली शहर में एक इमारत गिरने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। सरकारी मीडिया ने आज ये जानकारी दी। सरकारी समाचार एजेंसी नेशनल न्यूज एजेंसी के मुताबिक 8 अन्य लोग घायल हो गए। लेबनान की नागरिक सुरक्षा एजेंसी ने बताया कि कम से कम एक व्यक्ति को गोली लगी है। बता दें कि इमारत गिरने के बाद इलाके के निवासी उस स्थान के आसपास जमा हो गए जहां इमारत गिरी थी और उन्होंने हवा में गोलियां चलाईं। बाब तब्बानेह इलाके में स्थित 6 मंजिला इमारत कल रविवार दोपहर को ढह गई। लेबनान के दूसरे सबसे बड़े शहर त्रिपोली के निवासी लंबे समय से सरकारी उपेक्षा और घटिया बुनियादी ढांचे की शिकायत करते रहे हैं। त्रिपोली में खराब निर्माण के कारण इमारतों का ढहना कोई असामान्य बात नहीं है, लेकिन रविवार की घटना से लोगों में आक्रोश फैल गया। अधिकारियों ने इमारत गिरने के कारणों की जांच और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का वादा किया है। चीन ने अमेरिका के उन आरोपों को खारिज कर दिया है जिनमें कहा गया है कि उसने गुप्त रूप से परमाणु परीक्षण किए हैं। चीन ने इन आरोपों को सरासर झूठ बताया है और अमेरिका पर खुद नए परमाणु परीक्षण शुरू करने की मंशा रखने का आरोप लगाया है। समाचार एजेंसी एएफपी से बात करते हुए चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका के दावे पूरी तरह बेबुनियाद हैं। शुक्रवार को जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र के निरस्त्रीकरण सम्मेलन में अमेरिका ने आरोप लगाया कि चीन ने साल 2020 में परमाणु परीक्षण किए थे। इसके अलावा भी उसने कई परमाणु परीक्षण किए हैं और भविष्य में और परीक्षण करने की तैयारी कर रहा है। ये आरोप ऐसे समय में लगाए गए हैं जब अमेरिका और रूस के बीच आखिरी बची परमाणु हथियार नियंत्रण संधि की मियाद एक दिन पहले ही खत्म हो गई है। अमेरिका ने अब एक नए परमाणु हथियार नियंत्रण समझौते की मांग की है जिसमें चीन को भी शामिल किया जाए। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 19.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने जेनजेड आंदोलन के दौरान हुई घटनाओं की जांच के लिए गठित जांच पूछ आयोग की मियाद 25 दिन बढ़ाने का किया निर्णय। राज्यसभा से पर्यटन विधेयक 2081 हुआ पारित, सामाजिक संजाल विधेयक 2081 हुआ वापस। और लेबनान के त्रिपोली में इमारत गिरने की घटना में कम से कम 15 लोगों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।